तो आइए आज के सत्संग को आरंभ करने से पहले भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। आप हमारे पीछे ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसको बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र। ये भगवान विष्णु का आराध्य मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज यहाँ भगवत गीता के श्रीमद् भागवत के ऊपर आधारित हरि कथा में। अहमदाबाद के मणिनगर में डॉक्टर अशोक कुमार रामानी और परिवार की ओर से आयोजित सत्संग में भगवत गीता विश्व के अंदर बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है। भगवत गीता सबसे ज्यादा मुख्य प्रमुख अथवा मोस्ट अथॉरिटेटिव है, इसलिए क्योंकि यह स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। अन्य शास्त्र भगवान के विषय में किसी और ने कहे हैं, लेकिन ये स्वयं भगवान ने कहा है। तो दो शब्द हैं भगवत गीता में, भगवत और गीता। दोनों शब्दों में से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भगवत, और प्राय हम सब लोग गीता गीता कहते हैं, लेकिन भगवत शब्द उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता का मतलब गीत, गीत तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। तो भगवान ने जो गीत गाया है, और गीत भगवान ने क्यों गाया है, दुख दूर करने के लिए और सुख भरपूर करने के लिए। अर्जुन दुख में था, उस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने गीत गाया है। और गीत गाने का मतलब है कि आपको सुख प्राप्त, सुख की प्राप्ति हो, आपको आनंद की प्राप्ति हो, ये गीत का उद्देश्य होता है। तो भगवद गीता का परिचय आज देंगे विशेष रूप से। तो ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के स्थान के ऊपर बताई। कुरुक्षेत्र इस धरती के ऊपर ये द्वापर युग का तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा मान। आप में से अगर किसी भागे से जाके देखा है तो ये स्थान दिल्ली से 150-60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पंजाब के रास्ते के ऊपर जाते हुए स्थान आता है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के अंदर उसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए कि बहुत बड़े धर्म के अनुष्ठान वहां हुए करते थे और अभी भी होते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर, और उस ब्रह्म सरोवर के ऊपर ग्रहण के दिन के ऊपर लाखों की संख्या में लोग वहां स्नान करने के लिए जाते आजकल भी। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारका से विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए थे, और अपने पूरे द्वारका से रानियों को लेकर राज पूरे के साथ ठाट बाट के साथ कुरुक्षेत्र में गए थे। तो उस समय बहुत बड़ा प्रसिद्ध सत्य युग का तीर्थ और द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र था। आज भी कुरुक्षेत्र इस धरती के ऊपर है, जहां वो ब्रह्म सरोवर यथारूप है जिसमें स्नान किया जा सकता है। बहुत अभी सुंदरीकरण करके उसको बनाया गया है। और दूसरा स्थान कुरुक्षेत्र के ऊपर अभी भी अंदर जो देखने जैसे है वो आगे जाके जहां भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई है, वो स्थान एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे अभी भी वहां चिन्ह के रूप में निशान के रूप में एक छोटा रथ बनाया हुआ है। कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, वो 7 किलोमीटर आगे ब्रह्म सरोवर से जाने से इसका दर्शन होता है। ज्योतिसर उसको कहते हैं, ज्योतिसर। तो गीता का भी भाव है ज्योतिसर, मतलब आपको प्रकाश में लाए, तो वो ज्योतिसर उस स्थान का नाम है। और उससे थोड़ा आगे आएंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सुंदर पुराना प्राचीन स्थान है जहां भीष्म पितामह वो तीरों की सैया के ऊपर सोए हुए थे, और पास में ही वो कुंड है जो अर्जुन ने अपने बाण से जल निकाल के और भीष्म पिता सोए हुए के प्यास जो लगी थी तो पानी मांगा था, तो दुर्योधन तो उसको पानी सोने के चांदी के गिलास में ले जाके देने का प्रयास कर रहा था। भीष्म पिता लेटे हुए बोला, ये पानी नहीं चाहिए, अर्जुन को बोलो पानी देगा। तब अर्जुन ने बाण धरती के ऊपर मारा था, धरती से गंगा की धारा बही थी और भीष्म पितामह के मुख में उस पानी को जो है प्रवाहित हो रही थी। तो वो अभी कुंड है और वो स्थान है। तो कुरुक्षेत्र इस धरती के ऊपर अभी वो स्थान जूं का तूं पड़ा है, और 84 कोस की चारों जो चौतरफ में उस स्थान का जो है डायमीटर है। तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध विशाल वो स्थान आज भी है जिसको जाके देखा जा सकता है। और विशेष रूप से ग्रहण के दिन तो बहुत बड़ा उसका महत्व है। तो इतना बड़ा महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण जब चले गए वृंदावन को छोड़ के, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। इसके कभी हंसी आती है, कभी ट्रेन में एक आदमी जा रहा था, कोई किराया का टिकट लिया नहीं था, तो टीटी ने पकड़ा उसको, भाई टिकट क्यों लिया है? बोला मैं राम जन्मभूमि देखने जा रहा हूँ। राम जन्मभूमि का उत्सव था ना, टिकट लेते नहीं थे, फिर राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। पुलिस वाले ने पकड़ा, बोला तेरे को कृष्ण जन्मभूमि ले जाता हूँ, चलो कृष्ण जन्मभूमि तो जेल में, चलो वहां कृष्ण जन्मभूमि जेल है। तो राम जन्मभूमि जा रहा है, तुम चलते रहो, कृष्ण जन्मभूमि लेके चलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान जहाँ उनका प्रकट्य हुआ है वो कंस का जेल है। अब उसका चिन्ह रूप से अभी भी मथुरा में कोई जाएगा तो वो एक छोटा सा कोठरी दिखता है जिसको वो जेल का प्रतीक वहां है। तो मथुरा से उसी समय भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में भगवान के आदेश से वसुदेव जी ले गए, और 3 साल और 4 महीने तक भगवान गोकुल में रहे। भगवान 3 साल और 4 महीने की आयु तक गोकुल में रहे, और जहां रहे उसको कहते हैं महावन। महावन तो ये पूरा जो ब्रज क्षेत्र है, ये 84 केस कोस में ये भी है, और इसमें 12 बड़े वन हैं। उन 12 वनों में से 5 जमुना के एक तट पे हैं और 7 दूसरे तट पे हैं। तो ये जमुना के दूसरे तट पे जिस तरफ 5 वन है उसमें से एक बड़ा महावन है, उसको गोकुल भी कहते हैं, गोकुल महावन। तो वहां नंद बाबा का महल था, वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही वहां पहुंच गए और 3 साल और 4 महीने वहां रहे। और अंतिम लीला जो भगवान की वहां हुई है वो हुई है उखल बंधन लीला। उखल बंधन लीला, जैसे भगवान का नाम दामोदर हुआ, माँ यशोदा ने उखल से बांध दिया, माखन खा रहा था और मटकी फोड़ दी थी, तो भगवान बंधे हुए दो पेड़ों के बीच से निकल के बाहर गए और उखल पीछे अटक गया और वो दो पेड़ नीचे गिर गए, तो उनमें से दो देवता निकले, लेकिन सबने देखा इतने बड़े पेड़ कैसे गिरे हैं, तो इस रोज यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, तो इस स्थान को छोड़ना चाहिए, तो उस स्थान को छोड़कर और ये सारे ग्वाल बाल गोपाल वहां से नंद बाबा के साथ जमुना को पार करके आके यहाँ रहे जहां अभी वृंदावन है। इस वृंदावन से वो आगरा वाला मेन रोड जाता है, वहां से 5 किलोमीटर वृंदावन अंदर है, उस स्थान का नाम है छतिकरा। तो ये छकड़े जो होते हैं ना, जब पुराने जमाने में जो छकड़े होते थे, जब बैलगाड़ियां उनको छकड़े कहते थे, तो नंद बाबा ने यहाँ आकर सारे छकड़े खड़े किए थे और यहाँ ये 3 साल और 4 महीने यहाँ वृंदावन में रहे थे। तो यहाँ वृंदावन में जब रहे तो भगवान की कालिया नांग के दमन वाली लीला और दूसरी भिन्न भिन्न लीला इस क्षेत्र में हुई है, और फिर यहां से भगवान ये 6 साल भगवान की 8 महीना आयु हो गई और इसके बाद जाके रहे नंद गांव में, जो नंद बाबा का महल है। तो ये 3 पर्वत के रूप में ब्रज के अंदर 3 पर्वत है, छोटे छोटे 3 पर्वत है, एक गोवर्धन तो सभी जानता है, गोवर्धन उसके नाम से गोवर्धन नाथ भगवान का नाम हो गया, गोवर्धन भगवान श्री विष्णु का स्वरूप माना जाता है। दूसरा पर्वत है नंद गांव में, नंद गांव पर्वत के ऊपर है और उस पर्वत के 4 मुख है, तो उसको कहते हैं नंदीश्वर पर्वत, भगवान भोलेनाथ वहां पर्वत के रूप में विराजमान है और उसके 4 मुख है, सारी ये 4 मुख इसके नहीं है, तो है नंदेश्वर भगवान, और तीसरा पर्वत जो है उसके 4 मुख है बरसाना, बरसाना जहां राधा रानी के पिता वृषभानु का महल था, उसके 4 पर्वत, वो ब्रह्मा जी है, 4 मुख वाला ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी उस पर्वत के रूप में रहते हैं, भगवान शंकर पर्वत के रूप में वहां रहते हैं और भगवान विष्णु गोवर्धन पर्वत के रूप में वहां विराजमान है। तो बात कर रहे थे कि नंद बाबा का महल उस नंदेश्वर पर्वत के ऊपर है, वहां भगवान 3 साल और वहां भी 3-1 महीने रहे थे, और इस बीच में मथुरा से कंस ने अक्रूर को भेजा था। भागवत में ये छोटी कथा आती है कि नारद जी कंस को बोला, आप बिल्कुल निश्चिंत होके बैठ गए हो, वो आपके मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है, कुछ नहीं कर रहे हो? बोला कौन? बोला वो नंद बाबा का जो बेटा है कृष्ण, उसके साथ बलराम उसका भाई है, ये दोनों वसुदेव के बेटे हैं, तुम्हें मालूम नहीं था? जाओ उनको बुलाओ। कैसे बुलाएं? बोला मंत्रणा कर लो। तो आपस में मशवरा किया गया कि अक्रूर जी को ही भेजें, अक्रूर यदुवंशी है, वसुदेव वालों का भाई है, तो भाई अक्रूर काका को भेजो कि भगवान कृष्ण और बलराम को यहां लेके आए, ये निमंत्रण देके लेके आए कि यहां बहुत बड़ा एक मेला लग रहा है और मेले के अंदर एक धनुष यज्ञ होगा और आप आए इसमें भाग ले। अक्रूर जी जब लेने गए हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम को नंद गांव से, और यहां से नारद जी जाके कृष्ण बलराम वन में गाय चरा रहे, कृष्ण को एक तरफ बुलाया, बोलता है जिस काम के लिए अवतार लिया था वो भूल गए, माखन खाते रहोगे क्या? बोले क्या बात है? बोला असुरों का नाश करना है, बहुत बड़ा काम है, धरती का भार उतारना है, आपने तो धरती को वचन दिया था उसका भार उतारना है, अब जल्दी चलो वृंदावन को छोड़ो, बहुत हो गया माखन खाना। अब उधर से उसको बोला उधर इसको बोला तुम जाओ, दोनों को तैयार किया ये नारद ने अपनी लीला विशेष की, और तब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ दिया 11 साल और कुछ महीने की आयु में, 3, 3, 6 और 3, 9, 1 साल, दूसरा 10 साल और कुछ महीने, तो भगवान मथुरा आए गए। तो हरे कृष्ण प्रभु, तो भगवान मथुरा में प्रवेश किया, और बहुत समय मथुरा में रहे, बहुत समय 30-1 साल के करीब मथुरा में भगवान का रहना हुआ। पहले तो बड़ी सुंदर लीला है, कितनी उनकी वर्णन करें, जितनी वर्णन करें उतनी आनंदमय लीला है भगवान की। लेने भगवान मथुरा में रहने के बाद जब जरासंध से 17 बार युद्ध किया और हर बार जरासंध को हरा दिया, और जरासंध वापस और जाके कृष्ण उसको मारने के लिए तैयार होते, बलराम जी कहते हैं, नहीं बलराम जी बोलते इसको मारना है अभी, फिर मत मारो, ये अपने मामे का सुसर है ना, कंस का सुसर है, इसको क्यों मारने बेचारे को, छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, छोड़ दो छोड़ दो। तो बलराम पूछे किसको छोड़ने को क्यों बोलते हो, कृष्ण बोलते हमको जाके दूसरे शत्रुओं को मारना पड़ेगा ढूंढ के ना, इसको छोड़ो और इकट्ठे करके यहां लेके आएगा दोबारा, फिर यही मारेंगे, बहुत आसान है। तो 17 बार जब जरासंध आ रहा था आक्रमण करने के लिए मथुरा के ऊपर, तब काल यवन नाम के, काल यवन, यवन शब्द तब भी था, तो काल यवन को सेना में भर लिया और ब्राह्मणों को बुलाया, बोला तुम बताओ इस बार मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, लेकिन सुन लो अगर मेरी विजय नहीं होगी तो आपको मार दूंगा मैं, तुम ऐसा पाठ पढ़ोगे हमारी विजय हो, हमारी सेना के साथ आगे आगे चलो। अब ब्राह्मणों का विजय इसकी नहीं होगी तो ये यहां हमको मार देगा, इससे अच्छा है कि वहां जाके मथुरा भगवान के हाथों से मरे, वो तो सफल होंगे, इसके हाथों से क्यों मरे। तो ब्राह्मण आगे जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण देखो अरे इस बार तो जरासंध दुष्ट ब्राह्मणों को लेके आया सेना में, और ये राम राम जब, और जब क्या गा क्या रहे ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण देवाय गोदेवाय जगदित्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अरे ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए आप अवतार ले तो, अब ये ब्राह्मणों की रक्षा कैसे करें, ये तो मरने आ रहे। तब भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि ब्राह्मणों को तो मारना नहीं है, इसलिए तो मैंने अवतार लिया है कि ब्राह्मण की रक्षा करें। भगवान ने वहां से भागने का निर्णय लिया, तब से भगवान का नाम हो गया रणछोड़राय, उस समय उनका नाम हो गया रणछोड़राय, रणछोड़, रण को छोड़ गया। इस दुनिया में कोई रण से छोड़ से भागता है उसको कहते हैं कायर है, भाग गया बहुत डरपोक है, लेकिन भगवान के भागने से भी उनकी पूजा होगी रणछोड़राय से, कि भगवान रण छोड़ के भाग गए। और वहां से भागते हुए पीछे काल यवन आ रहा था, और मथुरा से आगे निकल के आगरा से दूर भागे तो स्थान आता है धौलपुर, राजस्थान का एक और छोटा सा जिला पड़ता है एक धौलपुर, धौलपुर के अंदर में एक स्थान है जहां सोया हुआ था मुचकुंड, मुचकुंड देवताओं की बहुत बड़ी सहायता की थी युद्ध में, और उन्होंने कहा अब क्या करना है, मेरे को थक गया हूं, बोला जाके आराम से नींद सो जाओ। बोला फिर मेरी नींद कोई खराब तो नहीं करेगा, बोला जो तेरी नींद खराब करेगा तो जिसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान भागते भागते उस गुफा के अंदर गए, हम गए थे उस स्थान को देखा है जहां वो मुचकुंड गुफा के नाम से अभी प्रसिद्ध है, धौलपुर जाते हुए अंदर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है आगरा बॉम्बे रोड। तो अंदर भगवान गए, अपना पीतांबर जो था उतरी वो उस मुचकुंड के ऊपर डाली और खुद गुफा के अंदर चले गए भगवान। ये जो पीछे काल यवन आया कि यहां सोया हुआ है उठो, लात जो मारी मुचकुंड को, मुचकुंड से उठा तो काल यवन भस्म हो गया मर गया। तो भगवान ने अपने हाथ से नहीं मारा, बोला इसको कौन हाथ लगाएगा, इसको भगवान जिसको मारता है उसका भी उद्धार होता है, ये मेरे मारने के योग्य नहीं है। तो भगवान फिर वहां से द्वारका चले गए, और द्वारका में फिर भगवान ने बहुत समय तक राज किया। तो बात ये इसलिए मैं कह रहा था कि बात कहने का इसका भाव हमारा ये था कि भगवान जब द्वारका चले गए तो बहुत बड़ी दूरी हो गई वृंदावन के भगवान के प्रेमी गोप ग्वाल बाल भक्तों से, और भगवान से ये 100 साल की दूरी रही है, 100 साल इनकी जुदाई रही है। एक शराब था, प्रतिशराब था राधिका और कृष्ण के बीच में, कि 1 साल तक इनकी दूरी रहेगी, तो ये 1 साल तक इनका आपस में मिलन नहीं हो रहा था। तो जब अनकरीब साल पूरा होने वाला था वो तब ग्रहण हुआ था सूर्य ग्रहण, और भगवान श्री कृष्ण यहां से कुरुक्षेत्र गए थे, और ये संदेश जब मिला था वृंदावन में तो वृंदावन से सारे ग्वाल बाल नंद बाबा आदि बैलगाड़ी में चढ़कर और गए थे कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में सब राजाओं के बहुत बड़े बड़े तंबू लगे हुए थे, शिविर लगे हुए थे। तब उस जमाने में राजा महाराजा धर्म अनुष्ठान बहुत बड़ा करते थे, अभी भी जाके देखेंगे वृंदावन में एक एक घाट बना हुआ है, एक एक राजा के, ये ग्वालियर के राजा ने बना था और ये आगरा के राजा का बनाया हुआ है और ये भरतपुर के राजा का बनाया हुआ है। तो राजा महाराजाओं के पहले मंदिर और बंगले हुआ करते थे, वहां जाके राह करते थे, तो धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, तब प्रजा का पालन ठीक करे तरह से कर सकते थे। अब तो समय बदल गया है, वो बातें नहीं रह गई। तो महाराज हरे कृष्ण, क्या हो गया, कहां कथा पहुंची, कुरुक्षेत्र में वहां सारे। तो वहां जब ये ग्वाल बाल आदि पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण की उस साल उम्र 100 इस धरती के ऊपर 100 साल से ऊपर थी, 100 साल से ऊपर उम्र थी। 125 साल तक भगवान ने अपनी लीला इस पृथ्वी के ऊपर की, लेकिन भगवान की आयु देखने में कभी भी 16 साल से ऊपर नहीं हुई, इसलिए भगवान कहते नव यौवनम च, नव यौवनम सदा नव युवक रहते हैं, वो जो भगवान का स्वरूप है उससे ऊपर जाता नहीं है। 100 साल की आयु थी, लेकिन माँ यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा इतने समय के बाद, तो उसको उठा के गोद में ले लिया। वो गोद में लेके अपने उसके माथे को सूंघती, आंखों से आंसू बह रहे, तो माँ के स्तन से दूध निकल रहा है। तो इनका आपस में माता पिता का ये प्रेम, नंद बाबा उससे बहुत प्रेम से मिले, ग्वाल बाल गोपियां सब मिले, एक इनका मिलन बहुत समय के बाद इस कुरुक्षेत्र में दोबारा हुआ था। तो ये वो स्थान बहुत बड़ा। उसके बाद दोबारा एक और सूर्य ग्रहण हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ सिद्धपुर, आपके सिद्धपुर एक स्थान है गुजरात में, यहाँ आए थे। ये जो अंबाजी के सारे पुजारी वहां से आते हैं, जो पुजारी जितने भी है वहां के, हाँ तो वो स्थान है दोबारा। क्योंकि क्यों यहाँ आए थे, क्योंकि वहां युद्ध हो गया था, और युद्ध की वजह से कुरुक्षेत्र के अंदर सब जगह मांस और हड्डियां और ऐसा वातावरण था कि वहां जाया नहीं जा सकता था। तो दूसरे ग्रहण पे भगवान इस क्षेत्र में आए थे विशेष रूप से। तो ये मुख्य स्थान है जहां भगवान दोबारा पुनः एक बार आए थे। तो वहां जब ये आपस में ग्वाल बाल और गोपियों का मिलन हुआ, तब सदा के लिए सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण रात को सोए हुए भी द्वारका के अंदर गोपी गोपी राधा राधा ऐसे कहा करता था, और रुक्मणी आदि को बहुत बड़ा आश्चर्य होता था, किसको याद करता है। तो यहां अभी राधिका को देखा, तो राधिका को देखा तो उसकी सेवा करने का भाव हुआ रुक्मणी को। तो राधिका को दूध देखकर रुक्मणी वापस लौट के आई और आके भगवान श्री कृष्ण के चरण संवाहन करने लगी, चरण दबाने लगी। तो देखती है चरण के ऊपर इतना बड़ा जैसे जले हुए का फफूंदा हो, ऐसे फफूंदा हो गया। बड़े आश्चर्य हुआ देखने, प्राणनाथ आप कहीं गए नहीं, द्वारकाधीश आप कहीं गए नहीं, ये वसुदेव कहीं गए नहीं, तो आपका ये चरण जला हुआ कैसे दिख रहा है, तो बड़ा फफूंदा हो गया है। भगवान मुस्कुरा के बोले, आप बहुत गर्म जल्दी में दूध राधिका को देकर आई, उसके हृदय में मेरे चरण विराजमान करते होते हैं, अब उसके मेरे चरण उसके हृदय में सदा निवास करते हैं, उसके चरणों के ऊपर बहुत गर्म दूध देख के आए। तब रुक्मणी को समझ में आया कि राधिका को क्यों इतना याद करते हैं, कि वो कभी एक समक्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के विशेष रूप से उस स्थान के ऊपर भगवद गीता का ये संदेश अर्जुन को दिया था। और यही स्थान क्यों चुना था, महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का स्थान ही क्यों चुना था, क्योंकि एक तो धर्म का क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र होता है वहां मोह नहीं हो सकता है। मोह का मतलब है संसार में कुछ चीजों की प्राप्ति का मोह और कुछ चीजों के जाने का मोह, ये तो संसार में है। तो अर्जुन और कृष्ण जब ये ढूंढने के लिए निकले, तो कौन सा स्थान चुना जाए जहां इस युद्ध को आयोजन किया जाएगा, युद्ध का ये बहुत बड़ा आह्वान हो रहा था। और युद्ध क्यों हुआ ये तो आप सबको ठीक तरह से जानकारी है कि युद्ध होने के कारण क्या थे, कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ क्यों, इसकी अरे कृष्णा सब इस बात से सब परिचित है, सबको इस बात का तो ठीक तरह से ज्ञान है कि युद्ध हुआ क्यों था। होना तो चाहिए था कौरव वंश का राजा भीष्म पितामह को होना चाहिए था, अधिकारी तो वो था, लेकिन वो पितृ भक्त इतना था, मातृ भक्त तो दुनिया में होते हैं लेकिन पिता का भक्त सबसे बड़ा, दुनिया में कोई उदाहरण चाहिए तो भीष्म पितामह से बड़ा कोई पितृ भक्त नहीं हुआ है। एक दिन अपने पिता को चिंतित देखा, और पिता को चिंतित देखा तो बड़ा आश्चर्यजनक होकर पूछे, पिता से तो नहीं पूछा, जो सारथी गया था उससे पूछा, पिताजी चिंतित क्यों दिख रहे हैं आज। बोला जी नदी किनारे गए थे और वहां से आते हुए एक बहुत सुंदर कन्या को वहां देखी थी मछियारे के घर में, और आपके पिताजी उनसे बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दी, मछियारे ने मछी नाव चलाने वाले ने अपनी बेटी महाराज को देने से मना कर दी, शांतिनु महाराज का नाम था और गंगा उनकी एक पत्नी गंगा थी साक्षात। तो भीष्म पितामह पिताजी से पूछा नहीं, सीधा उसके पास गया, बोला मैं बड़ा बेटा हूं शांतिनु का और आपकी कन्या मेरे पिता को विवाह के देने में आपको क्या आपत्ति है, क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्या आप उसके बड़े बेटे पहले हो, मेरी बेटी का बेटा राजा नहीं हो सकता है, अगर वो राजा नहीं होगा तो मैं बेटी मेरी क्यों दूं। उसका बेटा राजकुमार नहीं हो सकता है और पीछे उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसको राज नहीं मिलेगा। भीष्म पिता ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज नहीं लूंगा, मैं राज नहीं लूंगा, मैं वचन देता हूं। तब वो कहता आपकी बात को सत्य में मानता हूं कि आप राज नहीं लेंगे, लेकिन आप विवाह करेंगे, आपका बेटा होगा। वो कहेगा मैं बड़े बेटे का बेटा हूं, मेरे को राज दो। तब भीष्म पिता ने दोनों हाथ ऊपर उठाया, मैं ये वचन लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी लूंगा, शादी भी नहीं करूंगा, तो बचा ही नहीं होगा, फिर तेरी ही बेटी के बेटे का राज नहीं जाएगा ना। इसलिए वो जो देवव्रत था उसका नाम भीष्म उस दिन हो गया जिस दिन उसने ये प्रतिज्ञा की। भीष्म का मतलब बहुत कठोर, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने वाला, और ये कठोर प्रतिज्ञा इसलिए उसको कहते ब्रह्मचारी तो बहुत सारे घूम रहे हैं, क्या उस वक्त क्या भारतवर्ष में ब्रह्मचारी साधु नहीं देखा? बहुत साधु थे, लेकिन वन में रहते थे, फल फूल खाते थे, कंद वृक्ष खाते थे, पत्ते खाते थे, तो जो खाना जरा सादा खाएगा वो तो अपने इंद्रियों के ऊपर वश कर सकता है, लेकिन ये भीष्म पितामह राजमहल में रहता था। कहां रहता था भीष्म पितामह? हस्तिनापुर के राजमहल में रहता था। सारी दुनिया की सुविधाएं उसके सामने सुविधाएं थी, वो उसके बीच में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत कठिन है। ब्रह्मचारियों के संग रह के पालन करना बहुत आसान है भाई, आश्रम में मंदिर में सन्यासी साधु ब्रह्मचारी सब एक जैसे रहते तो रह सकते, लेकिन ये तो घर के अंदर रह रहा था और ऐसे माहौल में रहता, राजपाट ठाट बाट राजाओं का था, उसके बीच में रह रहा था, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन भीष्म पिता मैंने तो असल अधिकारी तो वो था राज का, उसने राज लिया नहीं, अब राज का कोई अधिकारी हुआ नहीं, अब अधिकारी कोई राज का नहीं हुआ, तो जो बेटे हुए शांतनु के दूसरे उससे सत्य, उसका नाम सत्यवती था, सत्यवती ये भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, मत्स्य गंधा इसको कहते हैं, मत्स्य गंधा, जिससे जन्म लेते ही मच्छी की गंध आती थी, मछली की। लेकिन पराशर महाराज ने उसको वरदान दिया था कि उसमें से सुगंध फिर आती थी, इसका भी जन्म बहुत बड़ा दिव्य, अपने अलग ही ढंग का जन्म हुआ है। ये व्यास की माता जी है, यही सत्यवती व्यास की माता है, भगवान व्यास देव जिसने सारे वेद लिखे हैं उसकी माता ये सत्यवती है। ये भी एक बहुत बड़ा अद्भुत और दिव्य कथा है, लेकिन कहने का भाव है कि पराशर जो वसुदेव व्यास का पिताजी है उसकी कृपा से उसके अंदर से वो मछली की दुर्गंध चली गई थी, तो वो सत्यवती फिर तो महारानी हो गई, महाराज शांतिनु की उस वंश में, फिर उसके जो उसको संतान नहीं है उसके, फिर इसके तो बेटे हुए, उनके दो बेटे हुए, चित्र किसी का नाम है याद है किसी के, दो बेटे शांतिनु के, हरे कृष्णा। पुराने जमाने में स्कूलों में पहला कोई जमाना था स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था शास्त्र रामायण महाभारत भागवत आदि बच्चों को कहानियां घरों में, तो सब कुछ याद था। लेकिन आजकल के स्कूल का हाल क्या है कि ये आध्यात्मिक तो शिक्षा स्कूल में बंद हो गई, तो एक स्कूल का इंस्पेक्टर स्कूल में गया और जाके बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों भगवान शंकर का महान धनुष जनक के सभा में किसने तोड़ा था, बताओ। मैंने नहीं तोड़ा सर, मैंने नहीं तोड़ा सर। मैं इंस्पेक्टर बोला, अरे कैसे बच्चे हैं, मास्टर साहब से पूछा ये क्या बोल रहे, बोला ये तो लड़का बहुत अच्छा है, ये ऐसा काम नहीं करता, मैं जानता हूं कभी इसने किसी को नहीं मारा है। तो हेडमास्टर के पास गया, हेडमास्टर प्रिंसिपल को कहने लगा, ये मैंने प्रश्न पूछा कि महाराज जनक की दरबार में शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा, वो लड़का कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और आपका टीचर कहता है कि ये अच्छा लड़का है। हेडमास्टर कहता है कभी खिड़की तोड़ देते, कभी कुर्सी तोड़ देते, कोई क्या हुआ अगर छोड़ दो इस बात को ना। तो अभी अपनी संस्कृति और शिक्षाओं का हाल ये है कि धर्म के ये जो कहानियां पहले जमाने में दादी बच्चों को सुनाया करती थी, ये भागवत और रामायण, वो कहानियां जो घरों के अंदर चलती थी, और हर ये भारत इसलिए पुराने जमाने में महान कहा जाता था कि कोई ऐसा छोटा गांव नहीं था जिसमें महीने में 10 बार कहीं कथा रात को नहीं होती थी। महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं 4 दिन 5 दिन सत्संग कथा हुआ करता था। तो लोग सुबह उठते थे, भगवान का दर्शन करके आशीष लेके जाते थे अपने काम से, शाम को लौट के आते थे, घर से स्नान पानी करके कथा सुनी और जाके आराम से सो जाते थे। तो सुबह से कथा, भगवान का दर्शन शाम को, भगवान का दर्शन सुबह, भगवान का नाम शाम को, भगवान का नाम, उसके बीच के अंदर सारे दिन के काम को वो इतना तकलीफ परेशानी ऐसे हो जाती थी, तो उसको हम कहते स्पिरिचुअल सैंडविच। सुबह भगवान की कथा सुनो, शाम को भगवान के स्मरण करो, तो सारे दिन का काम। सैंडविच देखे ना, सैंडविच तो सब कुछ मालूम है, सैंडविच में डबल रोटी होती है ना, वो मोटी मोटी दिखती है, अंदर कचरा सारा दब के भर जाता है, तो दिन सारे का कचरा दब जाता है और दोनों दिन वाले भगवान के नाम जिंदगी में याद रहते हैं, तो बाकी सारा चीज दब के समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब सुबह उठते अखबार पढ़ते हैं और शाम को आके टीवी देखते हैं, और फिर बीवी झगड़ा करती है क्योंकि बीवी से बात नहीं करते हैं, टीवी देखो फिर सारा काम बिगड़ जाता है। कितना घंटा, कितने लोग आप में से, मैं पूछता हूं, कितने लोग हैं जो मानो सुबह भगवत गीता का एक श्लोक अथवा भागवत का श्लोक पढ़ते हैं रोज का, अथवा रामायण? कितने लोग अपने यहां बैठे हैं, एक बेटी दो बेटी बोल रहे हैं, तीन चार बोल, दो चार और साधु बोल रहे हैं, धन्यवाद। अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। और कितने दिनों से अखबार को पढ़ने के बाद घर में संभाल के रखते हो, शाम तक भी नहीं रखना चाहते हैं, समाप्त होगा उसका टाइम, इसका अंदर सब कुछ रद्दी है ना। और पढ़ोगे पहले पहले क्या पढ़ोगे, भाव बम का धमाका हो गया, फलाने से अपहरण हो गया, उसको मारा गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, पहले उठते ही सारी दुनिया की परेशानी अपने सर में डालनी है, दुनिया की परेशानी सुबह सुबह उठते अपने सर में डालनी है नहीं? परेशानी बहुत बड़ी परेशानी दुनिया की, कोई काम नहीं काज नहीं, 2 घंटे बैठ के अच्छी तरह से पाठ जैसे करना है, ऐसे पाठ करते हैं, उसका पाठ होता है रोज, कई घंटे पाठ होता है, क्योंकि जिसकी जिसकी आवश्यकता है उसकी बहुत में जरूरत है, कोई इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। तो बात कर रहे थे शास्त्र पढ़ना अथवा भगवत नाम लेना, ये तो बहुत बड़ा उड़ता चला जा रहा है भारतवर्ष से, और इसका परिणाम क्या निकल रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि चरित्रहीनता आ रही है इस देश के अंदर, चरित्रहीनता आ रही है इस देश के अंदर। कैरेक्टर इज एवरपोरेटिंग लाइक स्प्रिट, जो चरित्र है वो कपूर की तरह और पेट्रोल की तरह उड़ता जा रहा है इस देश के अंदर, मानव जाति के अंदर से ये चरित्र उड़ता जा रहा है। कभी इसका अनुभव किया है तक चरित्र की कितनी हीनता आई है? मेरे ख्याल में कहीं कोई बहुत अच्छी बात कह रहा था कि हमने बहुत बड़ी प्रगति तो की है दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर आज क्या हो रहा है हमको पता है, दुनिया में आज क्या हो रहा है हमको पता है, लेकिन हमारे अपने घर में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है, अपने घर में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है हमको पता है। दुनिया की बातों को समझने के लिए 2-4 घंटे हम निकाल के टीवी को देख लेते हैं, लेकिन अपनी बच्चों की समस्या के लिए 5-10 मिनट आधा घंटा बैठ के उससे बात करने को तैयार नहीं है। अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कर लीजिए कितना बड़ा, और ये कारण है पहले साथ बैठ के खाते थे, अब साथ बैठ के खाना खत्म हो गया, साथ बैठ के खाने वाला जमाना चला गया, हर एक अपनी प्लेट उठाता, कोई टीवी के सामने बैठता है, कोई बीवी के सामने बैठता है, कोई कोने कोने में, कोई कौन से कोने में बैठता है, कोई कोई बैठ के संग साथ खाने को तैयार नहीं है। जो साथ खा नहीं सकते वो साथ रह नहीं सकते, जो साथ रह नहीं सकते वो साथ लड़ नहीं सकते, अपने 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 हक के लिए साथ लड़ नहीं सकते। जब सिकंदर आया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तब सिंधु नदी के किनारे के उस तरफ था, इस तरफ पोरस का राज था, दूर से अपने दूतों को भेजा कि पता करके वहां क्या हो रहा है। बोला महाराज रात को हमने देखा तो 4-5 जगह पे आग जल रही थी। बोला 4-5 जगह पे आग जल रही थी? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला एक का पकाया वो दूसरा नहीं खाते है, वो अलग अपना पकाते है सेना वाले, वो अलग बनाते, 4-5-6 है। बोला जो साथ खा नहीं सकते वो साथ कहां से लड़ेंगे, जो साथ खा नहीं सकते हैं, वो साथ लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर हम निश्चित रूप से इनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, इनको जीत लेंगे। तो साथ घर में नहीं खाएंगे तो प्रेम भी नहीं बढ़ेगा। प्रभुपाद महाराज ने विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था का स्थापना की, तो रविवार के दिन एक, एक प्रति भोज की तरह लव एंड ट्रस्ट फीस्ट, कि आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़े और प्रेम बढ़े, इसलिए शाम को दोपहर को 12 बजे आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, आरती देखिए, कीर्तन कीजिए, थोड़ा सा सत्संग सुनिए और फिर साथ बैठ के प्रसाद खाओ। सब जगह सब मंदिरों में प्रसाद दोपहर को रविवार के दिन जो भी आए उसके लिए फ्री हुआ करता था। तो पूछा कि ये इसका उद्देश्य क्या है, बोला इसका उद्देश्य जब साथ बैठ के खाएंगे लोग ना, जब साथ बैठ के खाएंगे तो सारी अपने छोटे छोटे जो घर के अंदर मसले होते हैं, समस्या होती है, उनका समाधान हो जाएगा। When you eat together, all the differences are reconciled when you take food together. साथ बैठ के जब भोजन करेंगे ना, छोटे छोटे हमारे अंदर जो differences हैं, वो सब कम्युनिकेशन गैप की वजह से। कम्युनिकेशन गैप का मतलब हमारे एक दूसरे से जो उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, आपने पूछा कभी उसने कहा क्या। कम्युनिकेशन गैप का एक छोटा सा उदाहरण प्रायः सुना होगा कभी कि नहीं, एक आदमी बाहर से जा रहा था, घर के अंदर से आवाज आया, घर था उसके अंदर से आवाज आया, बाजू काट दे, गला काटो ना। ये तो बड़ा डर गया, गला काटो, भागता हुआ पुलिस में गया, पुलिस को जाके फरियाद किया, उस घर के अंदर खून हो रहा है, आदमी मारा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, बाजू काट रहे, क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखो पुलिस चारों ओर घर को घेरा कर लिया और दरवाजा खटखटाते हैं, बंदूक हाथ में उठा के, तो अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी निकलता है, ये क्या बात है, किसको मारा है, किसका गला काटा है, देखता रह गया, पुलिस कैसे आ गई, अंदर गया, घर का तलाशी ले रहे, कुछ नहीं, बोले कहां है, खून किया है आपने, किसका खून, किसको मारा, यहां तो कोई नहीं है, भाई किसको मारा है आपने, बोला गला काट रहा, किसका बाजू काटा है, किधर है। ओ तब वो मुस्कुराने लगा के सिपाही जी मैं दर्जी हूं, ये मेरा शागिर्द है, इसको मैं कमीज काटते समय कह रहा कि गला काटो छोरा, इसको कह रहा गला काटो बाजू काटो, अब गला काटो बाजू काटो, दर्जी था, हाँ टेलर था, अपने बच्चे को सिखा रहा था और बाहर वाले ने समझा कि इसी आदमी का गला काट रहा है। अब इसके ऊपर इतना उधम हुआ, कितना सारा सब खर्चा हो गया, आदमी इकट्ठे हो गए, वो हमारे घरों में भी झगड़ा ऐसी बातों पे होता है, सुना नहीं ना, हमने उसका अर्थ नहीं समझा, बात की नहीं कि कह क्या रहा है, सुना और बात। तो ये सुनी अनसुनी की बातों की वजह से बहुत बड़ी समस्याएं हमारे घरों के अंदर पैदा होती है। तो जब भोजन साथ खाते हैं ना, जब भोजन साथ आदमी बैठ के खाता है तो आस्ते आस्ते छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हुआ हो जाता है। भोजन खाते के समय हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए प्रेम से बैठना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। तो भोजन साथ खाना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब साथ खाते थे तो तब साथ रह भी सकते थे, जब से साथ खाना छोड़ दिया तब से साथ रहना भी समाप्त हो गया। अभी पूरा विश्व वापस आ रहा है इस तरफ कि जो पुराना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो अच्छा था। अब वैज्ञानिक विशेष रूप से जो 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 साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं, दो होता है डॉक्टरी में, दो विभाग अलग है, एक साइकेट्रिस्ट वो दवाई देता है, ये पागल हो गया इसको दवाई दो, और दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उसको मानसिक विज्ञान से देखता है कि इसमें कहां त्रुटि है उसको ठीक है। आजकल जो घरों का माहौल है उसके अंदर मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा हमारे पास समस्या पता है क्या लाते हैं, स्त्रियां जब आती है ये बेटा कहना नहीं मानता है, माँ आएगी एक ही बात हमको कहेगी, महाराज इसको बोलो बेटा हमारा कहना नहीं मानता है, बहुत गुस्सा करता है, क्यों भाई आपका क्या विचार है, ये सच है कि ना झूठ है, सभी आके यही प्रश्न पूछते हैं ना, ये लड़का बहुत झगड़ा करता है, तो हम एक ही प्रश्न पूछते हैं इसकी दादी कहाँ है, ये नहीं कहते इस तुम्हारी सास कहाँ है, ये कहने से तो उसका सांस बंद हो जाता है। सास तो नहीं, इसकी दादी कहाँ है, तो दादी तो दूसरे भाई के घर हमारे देवर जी के वहां रहती है, तो फिर हम हाथ जोड़े कहते बेटी ये बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, बोले ऐसे कैसे भाई, इसका कारण क्या, विज्ञान से क्या इसका कारण है? कारण इसका ये है, मानसिक जो 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 साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि माता पिता को तो बच्चे का ताड़ना करना है, ठीक है चलो नहीं जा रहा पढ़ने, पढ़ने जाना चाहिए, जाओ होमवर्क कर लो, थोड़ा ताड़ना भी करना है, मारना नहीं है तो ताड़ना तो करना है, तो बच्चा डरेगा, बच्चा डरेगा तो डरता हुआ दादी के गोदे में जाके गिरेगा, पिताजी बोले मारूंगा तो कहां भाग के कहां जाएगा, दादी के पास जाएगा, दादी दादी तो बाप की मां है ना, तो उसको मालूम है ये इससे बड़ी है, इसको कहेगी तो ये मेरे को नहीं मारेगा, तो दादी के पास दादी छुपा लेती थी उसको, बोले नहीं मारो नहीं, अच्छा होगा भाई नहीं करेगा ऐसे, तो दादी उसको बचा लेती थी और बाप का डर रहता था, अब बाप मारेगा किसके पास जाए, जाएगा नहीं थोड़ी देर रोएगा, फिर बाप ही कहेगा कोई बात नहीं बेटा आओ खाना खा लो, तो दो चार बार मारेगा खिलाएगा, बोला ये रोज मारता है रोज ऐसे करता है, इसकी क्या सुननी है अभी, रोज करता है ये तो रोज की कथा हो गई, लेकिन उसमें उसका डर रहता था, बाप का सब थोड़ा भय रहता था और दादी उसको बहुत प्रेम से संभाल लिया करती थी और फिर कहानी सुनाती थी और उसी के गोद में सो जाता था, तो ये जब से घरों के अंदर से दादियां चली गई हैं ऐसी शादियां जिसमें दादियां चली गई है वहां बर्बादियां हो गई है दादियां चली गई हैं, शादियों में दादियां चली गई तो बर्बादियां शुरू हो गई, टूटे फूटे घर हैं, कुछ सब कुछ संपन्नता है लेकिन वो चीज नहीं है जो प्रेम था, हरे कृष्णा। तो बात क्या कर रहे थे, कहां चले गए और दादियां जब से चली गई तब से सबसे घरों में कुरुक्षेत्र हो गया है भीष्म पिता मैं का तो भीष्म पिता वह असल उत्तराधिकारी था, और फिर सत्यवती के जो दो बेटे हुए थे, मतलब भीष्म पिता गंगा का बेटा है लेकिन वो मासी हुई सत्यवती, उसके जो दो बेटे हुए थे उसके नामों के ऊपर ये सारी कथा हो गई थी, ये होमवर्क है आप देख लेना क्या नाम थे, ये चित्रंगद और एक तो भाई कम से कम वो तो फास्ट मार्क्स में हो गया, चित्रंगद और चित्रवीर्य, चित्रगुप्त तो दूसरा है, चित्रगुप्त वो है जो सबके कंधे के ऊपर बैठा होता है और जो हम करते हैं वो लिखता रहता है, तो ये दोनों जो थे इन दोनों की शादी भी भीष्म पितामह उनके लिए लड़का लड़कियां लेकर आया, भीष्म पितामह गया कहां बनारस में, काशी के राजा की लड़कियों को स्वयंवर से उठा के आया, तीन को, दो को इनसे शादी कराई, तीसरी बोले मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, भीष्म तुमसे शादी करूंगी, मेरे से शादी, मेरे को शादी करनी नहीं, बोला मैं तेरे से शादी करूंगा नहीं जाके मर जाऊंगी, मर गई तपस्या करते करते मर गई, भीष्म के गुरु को जाके बोला परशुराम को, बोला इसको समझाओ मेरे से शादी करे अम्बा, भीष्म पितामह आया, भीष्म पितामह ने कहा को आके परशुराम ने कहा इससे शादी करो, बोला गुरुजी आप आज्ञा का तो मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं लेकिन मैंने वचन किया हुआ है कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, बोला फिर मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध तो महाराज करना पड़ेगा, आप निमंत्रण दे रहे तो मैं युद्ध करूंगा आपसे, गुरुजी कहते हैं तो मैं ना नहीं कर सकता लेकिन शादी नहीं कर सकता, और भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में युद्ध हुआ, गुरु शिष्य के बीच में युद्ध हुआ और दोनों को कोई परास्त नहीं किया, वो अम्मा मर गई थी, वो फिर शिखंडी बनी दूसरे जन्म में, और वो शिखंडी फिर भीष्म के मौत का कारण बनी, तो दो दो उन दो में से कोई, वो दोनों बीमार, एक बीमार होके मर गया और एक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब व्यास देव के द्वारा जो है वो पहले व्यास देव गए तो आंखें बंद कर दी, व्यास देव तो तपस्या से उठ के आए थे और व्यास का नाम, एक व्यास जो शब्द है वे उस नाम में वेद व्यास होता है, वेद व्यास एक सीट का नाम है, पोस्ट का नाम है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, भाई ये कौन है, ये वित्त मंत्री है, तो मंत्री है आज ये है दूसरी गवर्नमेंट, दूसरा कोई आएगा तो वेद व्यास तो उसका नाम है जो वेदों का विस्तार करे, लेकिन ये जो वेद व्यास जिसका अपन वर्णन कर रहे हैं इसका नाम है कृष्ण द्वपायन, कृष्ण से इसका नाम है काला था सांवला था, और द्वपायन इसके लिए द्वीप के ऊपर उसका जन्म हुआ था, एक द्वीप में आईलैंड के ऊपर द्वीप में इसका जन्म हुआ था, तो उसका नाम था कृष्ण द्वपायन, तो क्योंकि ये देखने में रूप उसका भय ऐसा था, तो उसके पास गया तो उसने आंखें बंद कर की, आंखें बंद कर दी, तो उसको जो पुत्र हुआ वो अंधा हुआ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा पुत्र हुआ, उसने आंखें बंद करी। और दूसरी पत्नी से व्यासदेव जब गया मिलने तो बहुत डर गई, कांप गई, वो पीली हो गई, तो उसका बेटा पीला हो गया पांडु। तो इन दोनों बेटों में से कोई भी योग्य नहीं हो रहा था जो राज करे। तब दोबारा बोलो एक पुत्र और उत्पन्न होना चाहिए, तो दोनों भाग गई और एक दासी को भेज दिया, तो उससे उत्पन्न हुआ विदुर। तो विदुर दासी पुत्र है, लेकिन है भाई इनका, व्यासदेव का बेटा है। तो धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए नीति से राज नहीं कर सकता था। तो पांडु राजा बना, और पांडु इतना बड़ा महान राजा बना कि कुरु वंश का पांडव के नाम से पांडु वंश हो गया। लेकिन पांडु बहुत जल्दी किसी कारण से शरापवश देह त्याग दी उसने, तो धृतराष्ट्र राज को छोड़ने वाला नहीं था। अभी धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को हड़प कर ले, नहीं वापस दे। तो धृतराष्ट्र अंधा होते हुए अपने मोह किसमें अंधा था, अपने बेटे के मोह में अंधा था, दुर्योधन के। हरे कृष्णा। पांडु के पांच पुत्र हुए, कुंती ने अपने वशीकरण मंत्र के द्वारा देवताओं से पांच पुत्र प्राप्त किए। सबसे पहला पुत्र धर्म या धर्मराज से युधिष्ठिर प्राप्त हुआ। तो यह समाचार जब आया हस्तनापुर में, तब पांडु रहता था बद्रीनाथ। कभी आप जाए गए हैं तो बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पे एक स्थान आता है जोशीमठ के बाद स्थान आता है जहां पांडवों का जन्म हुआ है। छोटा सा मंदिर अभी वहां है कि यहां रहते थे कुंती माद्री पांडु, वहां रहते थे उस स्थान के ऊपर, और वहां देवताओं के आवाहन से पांडवों का, तो जब वहां जन्म हुआ हिमालय में, तो वहां से समाचार आया कि महाराज पांडु को बेटा हो गया। तो गंधारी उस वक्त गर्भवती थी, लेकिन स्त्री को ईर्ष्या तो होती है, बोला फिर भी बेटा पांडु का मेरे बेटे के जन्म से पहले उसका जन्म हुआ, अब तो राज का अधिकारी वो मांगेगा, बेटा जो बड़ा है उसका पहले हक है। तो गर्भवती थी गंधारी, अपने पेट को मुट्ठा मार दिया और गर्भ नीचे गिरा, बोला मैं फिर भी रह गई, मेरा बेटा राजा नहीं हो सकता है। तो गर्भ जो नीचे गिरा, आजकल तो बहुत बड़ा एक विज्ञान यहां चल पड़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ, बच्चा बाहर टेस्ट ट्यूब में बच्चा बना लेते हैं। तो व्यास देव ने कहा कि नहीं, ऐसे तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो उसके गर्भ को नीचे 100 टेस्ट ट्यूब में मटकों में डाल दिया, और उसमें से 100 पुत्र पैदा हुए गंधारी के, ऐसे हुए, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। तो अब फिर ये झगड़ा यहां शुरू हो गया कि धृतराष्ट्र बड़ा था, राज नहीं कर सकता था क्योंकि अंधा था, और युधिष्ठिर बड़ा था इसलिए उसका अधिकार था पांडु के बाद, लेकिन दुर्योधन कि तो मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मेरे को मैं तो अंधा नहीं हूं ना, तो राज मेरे को मिलना चाहिए ना, मैं बड़े बाप का बेटा हूं इसलिए मुझे मिलना चाहिए। तो ये इनका बहुत बड़ा आपस में झगड़ा था, ये बहुत बड़ा झगड़ा इनके बीच में ये कारण था, और दोनों में से एक भी अधिकारी नहीं था। देखा जाए तो एक भी अधिकारी नहीं था राज का अधिकार तो भीष्म पिता में था। तो ये झगड़ा, जो चीज हमारी नहीं है उसके ऊपर झगड़ा कर रहे थे। ये ऐसा झगड़ा था कि किसी के घर से कोई सामान चुरा के लाए और फिर बोले कि नहीं ईमानदारी से बांटो, भाई तुम कह रहे हो ज्यादा क्यों ले रहा है, नहीं ईमानदारी से बांटना पड़ेगा नहीं तो झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारा मारी करें, पर सामान किसका है, बोला किसी और का उठा गया है, सामान किसी और का, उसके ऊपर आपस में झगड़ा चल रहा है। तो ये राज दूसरे किसी का था, वो बैठा था बेचारा, वो राज जिसका था वो बैठा था बीचम, लेकिन ये आपस में लड़ रहे थे, मेरा राज है। और ये मेरा राज करते करते इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि पांडवों और कौरवों के बीच में बहुत बड़ा विरोध हो गया, और विरोध यहां तक हो गया कि पांडु 12 साल तक वन में रहे, एक साल अज्ञातवास पूरा किया, तब भी उन्होंने राज नहीं देने के लिए कहा, राज नहीं देंगे, अभी तक भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं चले गए कौरवों की सभा में, बोला आप उनका राज आधा हाथ वापस दे दो। तो दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे, बोला 5 उनको गांव दे दो, केवल 5 भाई है, 5 गांव दो, क्षत्रिय है, अपना शासन करेंगे, जरूर जीवन निर्वाह करेंगे, बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक के ऊपर जितनी जमीन आती है उतनी भी मैं नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध टालने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तब भगवान ने भगवान को बांधना चाह रहे थे, तब उस वक्त भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, छोटा सा छोटा विश्व रूप कौरवों की सभा में भगवान ने दिखाया था। और तब दुर्योधन भगवान को कहने लगा, आप भोजन तो कीजिए, एक तरफ बैलता मैं तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, और तो इसको बांधो, और दूसरे कहना 56 भोग तैयार है, आप महाराज आइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सिद्धांत बताया था उस वक्त, ये महाभारत में आता है, कि भोजन उसके घर करना चाहिए जो प्रेम से खिलाए, जिसके दिल में प्रेम हो, और दूसरा ये अगर भोजन खाना है तो उसके घर में, किसी के घर में भी खाना हो तो तब खाए, जब मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं किसी का भी खा सकता हूं, अगर मैं मर जाऊंगा नहीं तो भूखा। तो दुर्योधन जी, तुम्हारे तो हृदय में प्रेम है नहीं खिलाने को, और भूखा मैं भी नहीं मर रहा हूं, ऐसे तुम्हारे घर नहीं खाना है। और वहां से निकल के विदुर के घर आए, और ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध गाथा है कि 56 भोग दुर्योधन के त्यागे, साग विदुर घर खाई। भाई विदुर के घर में आके भगवान जो दिया उसने विदुरानी, केले का छिलका दिया तो वो भी खा रहे थे बड़े आनंद से। तो ये भगवान श्री कृष्ण वहां से, ये युद्ध अनटल हो गया, नहीं टल सकता है, उसके बाद युद्ध की तैयारी हुई, और कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हुई महाभारत की। तो उसके बीच में 12 साल तक अर्जुन ने तैयारी की थी युद्ध की, 12 साल तक तैयारी की थी, और कितनी तैयारी की थी, भगवान शंकर को जाकर राजी करके उससे पशुपात लाया, इंद्र के पास जाके दिव्य अस्त्र लाया था कि युद्ध करना है। लेकिन जब युद्ध के लिए दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए, तब अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को, अब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान तो सारथी बने, तो बोला हाँ ठीक है ले चलता हूं। बोला क्यों भाई ले चलूं आपका रथ? स्थाप्य मे रथ अच्युत सेनियोर भ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान बोला क्यों? बोला निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं कौन से योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है। तो भगवान ने रथ को लाके भीषम द्रोण पर मुक्ताम, भीषम और द्रोण के सामने आके रथ खड़ा कर दिया। अब ये भगवान की चालाकी है, क्योंकि भगवान को गीता बतानी थी। अगर ये रथ भगवान दुर्योधन के और दुशासन के सामने खड़ा किया होता तो अर्जुन को और क्रोध आता, एकदम के इसको मार देना चाहिए। लेकिन भगवान ने रथ कहां खड़ा कर दिया? भीषम द्रोण पर मुक्ताम। और फिर भगवान ने इशारा किया, पश्यताम कुरुनति, देखो ये सारे तुम्हारे अपने दादे बामे है, कुरु है। ये 25वां श्लोक है पहले अध्याय का। और जैसे अर्जुन को भगवान ने उंगली का इशारा किया, देखो ये कौन है, अर्जुन ने कहा ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरा गुरुजी है, वो मेरा मामा है, शल्य, अरे इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। अब अर्जुन के हृदय में कृपा आ गई, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान हंसता है, थाली में भोजन परोस के किसी के सामने रख दिया जाए और वो कहे नहीं भूखा हूं 3-4 दिनों का, मेरे को भोजन दो, भोजन जब आए तो एकदम बोल नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं खाऊंगा? नहीं भाई बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे खाओ ना 3 दिन, अभी नहीं खाऊंगा। और युद्ध की तैयारी करके घर से आया, बोला मैं लड़ाई नहीं करूंगा, सबको कटा करके लाया, अभी लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने देखा बड़ा आश्चर्य है, युद्ध क्यों नहीं कर रहे? तब भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए भगवद गीता सुनाई। तो बात हम बीच में कर रहे थे जहां से हम यहां चले आए, कि युद्ध के लिए यह स्थान कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया है, ये बात हम कर रहे थे जो बीच में रह गई थी। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों निकले थे, जब कुरुक्षेत्र के स्थान से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान था, और किसान खेत के अंदर पानी कहीं से आ रहा था, तो पानी को बंद करने का प्रयास कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था, बंद नहीं हो रहा था। तो उसकी पत्नी भोजन ले आई, उसका छोटा बच्चा अपनी गोद में था, पति को बोला भोजन कीजिए। बोला भोजन कैसे करो, ये पानी रोकूंगा तब भोजन करूंगा, नहीं तो खेत सारा डूब जाएगा। बोला आप भोजन कीजिए, पानी मैं रोकने का प्रयास करती हूं। तो ये भोजन करने बैठा, वो मिट्टी डालने लगी, लेकिन पुरुष तो बहुत बड़े प्रयास से रोकने के लिए कर रहा था, लेकिन इससे इतना तो नहीं था कि सारा रोक पाए। दूसरा देखा मैं करते हुए मेरा पालन नहीं कर रहा हूं तो पति मेरा भोजन नहीं करेगा, तो ये मेरा धर्म ठीक नहीं है। तो उसके हाथ में बच्चा था, उस बच्चे को उस पानी जहां से आ रहा था उस खड्डे के अंदर बच्चे को दबा दिया, बच्चे को खड्डे में दबाते देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वो देखो वो पति भोजन करे और जो काम था वो स्त्री ने अपने हाथ में लिया था करते हुए, वो पालन पूरा नहीं करे, देखो बच्चे को हार दिया है, यहां युद्ध करना चाहिए। आपका दो भाइयों के बीच का युद्ध है, ये यहां होगा तब आप मोह से मुक्त होकर युद्ध कर सकते हैं, नहीं तो ये मोह ये देखो मोह कर्तव्य के बीच में मोह को आने नहीं दिया इस माता जी ने, अपने जो जो जो, जो दायित्व था, जो फर्ज था, उसको पूरे करने में इसने मोह को नहीं आने दिया है। तो इस लड़ाई में मोह नहीं आए, क्योंकि लड़ाई तो दो भाइयों के बीच में, दो भाइयों के बीच में। और लड़ाई का कारण क्या है? पहला श्लोक क्या है भगवद गीता का? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्व माम का पांडवास। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बेटे। अभी ताऊ जी अगर बोले कि मेरे बेटे कहां हैं और मेरे छोटे भाई के बेटे अलग कर दे, तो झगड़ा तो हो ही गया ना भाई, मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे। अरे मेरे ही सारे बेटे, बड़ा तू है, बड़ा तू है, मेरे बेटे कहने कहे तो झगड़ा खत्म हो जाए ना। तो सारे झगड़े का कारण है माम का पांडवास चाहिए, मेरे और तेरे। जब भी मेरा तेरा होने लगेगा तब झगड़ा होगा। और सारे घरों के झगड़े के अंदर कारण ये है कि मेरा और तेरा है, ये मेरे है और ये तेरे है। ये दो शब्द मैं और मेरा, तू और तेरा, दुनिया के अंदर झगड़े का कारण है। हम और हमारा कहना सीख जाए तो झगड़े खत्म हो जाए। I and me are the worst word in the dictionary. Have a word we and live peacefully. कहो हम सब हैं तो कोई झगड़ा नहीं है। मैं मेरा और तू तेरा झगड़े का कारण है ये दुनिया के अंदर। तो पहला श्लोक बता रहा है कि झगड़ा धृतराष्ट्र घर में कर रहा है। धृतराष्ट्र ने यह पूछा कि दोनों वहां इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके बाद धृतराष्ट्र बोला ही नहीं। और कोई श्लोक धृतराष्ट्र का नहीं है, भगवत गीता में एक ही श्लोक धृतराष्ट्र का है। तो हम कह रहे थे भगवत गीता कहां बताई, किसने बताई? भगवान श्री कृष्ण ने सुनी, कृष्ण ने अर्जुन ने, लेकिन हमने तो नहीं सुनी वहां। हमको कहा, हमारे पास कहां से आई? वही भगवत गीता जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, उसी वक्त संजय हस्तिनापुर के महल में बैठा हुआ धृतराष्ट्र को उसके ऊपर रनिंग कमेंट्री कर रहा था। जो हो रहा था वो घटनाएं बता रहा था। उस वक्त भी ये विज्ञान व्यासदेव के पास था, जो हृदय का दूरदर्शन, जो दिल के अंदर उसको सब दिखाई दे रहा था, जो 150 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो कुछ हो रहा था वो घर में बैठ के देख रहा था। और पुराने जमाने के लोगों को ये बात कहते तो शायद वो नहीं मानते, लेकिन अब तो हम जब टीवी के अंदर देख सकते हैं कोसों दूर की बात घर के अंदर, तो ये मुश्किल नहीं है कि ऐसा यंत्र बन सकता है, ऐसी कोई ऐसा विज्ञान हो सकता है जिसके अंदर दूर की चीज घर में बैठ के देख सकते। लेकिन ये तो चली जाएगी, लाइट तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो तो हृदय का दूरदर्शन था जो व्यास देव ने स्थापित किया था संजय उसके शिष्य के हृदय में। लेकिन फिर भी संजय ने सुना दी और धृतराष्ट्र ने सुन ली, तो हमको कहां से मिली, उसमें हमको कहां से पता लगा? तो इसी भगवत गीता को व्यास देव ने इसकी रचना की। महाभारत को व्यास देव ने सब शास्त्र लिखने के बाद, भागवत लिखने से पहले और सारे वेदों को लिखने के बाद महाभारत को लिखा बद्रिक आश्रम में बैठकर। महाभारत का जो जो लिखित रूप में आई है ये बद्रिक आश्रम में हुई है, व्यास देव के द्वारा बोली गई है। लेकिन लिखने के लिए महाभारत लिखी किसने? गणेश जी ने लिखी है। गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए व्यास देव ने राजी किया था, इसलिए बद्रिक आश्रम ने, जिसने भी बद्रिक आश्रम का दर्शन किया है, कोई बद्रीनाथ में गया है कभी तो बद्रीनाथ का दर्शन जो गए हैं उन्होंने देखा हुआ है, उनके लोग दोबारा उनकी स्मृति में आएगा। नहीं गए हैं तो हिमालय में चार धाम हैं, बद्रीनाथ, भगवान नर नारायण रहते हैं, लेकिन भगवान नर नारायण के सामने उद्धव वहां रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से उद्धव को भेजा था, आज भी उद्धव बद्रिक आश्रम में प्रतिनिधि के रूप में रहता है भगवान नर नारायण के वहां। तो ये है बद्रीनाथ और बद्रीनाथ, और दूसरा है केदारनाथ जहां भगवान शंकर सारे ही सिर्फ बेल देखा है, बेल का ऊपर जो हंप होता है थुई, वो सिर्फ बाहर है, इतना ऐसा है वहां शिवलिंग, तो वो अंदर सब चला गया, सिर्फ उतना ही बाहर रह गया। तो वो उसको कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ है, और एक गंगोत्री है जहां से गंगा निकलती है, एक जमुनोत्री है जहां से जमुना निकलती है। तो बद्रिक आश्रम में दो पहाड़ हैं, एक तरफ पहाड़ है जिसके ऊपर मंदिर है उसको कहते हैं नारायण पहाड़, वो नारायण स्वरूप है, और दूसरा है नर पहाड़, नर और नारायण, ये कृष्ण और अर्जुन नर नारायण थे पहले, नरनारायण के अवतार में कृष्ण और अर्जुन दोनों थे उधर, तो ये दो पहाड़ है, उसके बीच में से नदी बहती है अलकनंदा, और ये एक ऐसी जगह है जहां गाड़ी सीधी आपकी मोटर जाके सीधी वहां खड़ी होगी बद्रीनाथ में, और नर पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है, नारायण के ऊपर मोटर नहीं जाती, बीच में नदी है, छोटी सी एक पुलिया है, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे तो हिंदुस्तान का अंतिम छोटा सा गांव है माना। माना का गांव छोटा है, हाई अल्टीट्यूड है, वहां चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वहां पैदल चल के गाड़ी में जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। तो गांव में जब पहुंचेंगे तो वहां से 2 रास्ते ऐसे जाएंगे, एक रास्ता ऊपर जाता है, ऊपर जो रास्ता जाता है जहां पहले आएगा गणेश जी की गुफा, जहां गणेश जी बैठ के ये महाभारत लिखा है, और उसके ऊपर जो है वो है व्यास जी की गुफा, जहां व्यास जी बैठ के ये सारे शास्त्र लिखते थे। वहां से नीचे आएंगे, दूसरे रास्ते नीचे आएंगे तो सरस्वती नदी दिखाई देगी, वो सरस्वती नदी पहाड़ों के अंदर से वहां निकलती है, उस सरस्वती के किनारे के ऊपर व्यास देव बैठे हुए थे, और पांडव जब राजपाट छोड़ के हिमालय में ऊपर जा रहे थे, उससे आगे भी हिमालय में पंडित गए थे, तो वहां सरस्वती को सरस्वती के ऊपर से जाने में दिक्कत हो रही थी जाने को, तो द्रौपदी आदि नहीं जा पा रही थी, तब भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया था और सरस्वती के ऊपर उस पत्थर को रखा था, इसलिए उस पत्थर का आज भी नाम है भीम पुल, कि भीम का रखा हुआ वो पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, उसके ऊपर खड़े होकर देखें तो बहुत सुंदर वो सरस्वती का दर्शन है। तो उस स्थान के ऊपर व्यास देव बैठा करता था, और भागवत लिखने से पहले व्यास देव उस जगह पे बैठा है सरस्वती के तट के ऊपर बद्री का आश्रम में। तब नारद जी ने आके व्यास को कहा कि आप बड़े चिंतित लग रहे, क्या बात है? तो बोले मैंने शास्त्र तो सब लिखी है, 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, महाभारत भी लिख दी, लेकिन अभी भी मैं अंदर में समझता हूँ कुछ संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट हूँ। तब गुरु जी कहते हैं, नारद जी आप जरा विचार कीजिए असंतुष्ट का कारण क्या हो सकता है? बोला मैंने बहुत कुछ तो नेम तो लिख दिए हैं यज्ञ आदि करने के और पूजा पाठ प्रतिष्ठा के, लेकिन ऐसे लगता है कोई चीज मुझसे रह गई है जो मैंने नहीं लिखी है, इसलिए अब अधूरापन मुझे हृदय में दिख रहा है। तब पूछा नारद जी ने कहा आप ऐसे करो, एकांत में ध्यान में बैठो, आपने भगवान के नाम गुण रूप का वर्णन नहीं किया है। तो फिर व्यास देव ने अपने ध्यान में श्रीमद् भागवत को, सबसे आखिर में श्रीमद् भागवत शास्त्र व्यास देव ने अपनी मैच्योरिटी में लिखा है वेदांत लिखने के बाद, जिसमें भगवान के गुण रूप और लीलाओं का वर्णन है। तो महाभारत के बीच में भगवद गीता है, तो भगवद गीता जो हम पढ़ रहे हैं मध्यम महाभारतम, महाभारत के मध्य में है। 18 अध्यायिनी अम्ब, अम्ब का मतलब माता, ये माता 18 अध्याय की है, जिसमें 18 अध्याय गीता के। सारे महाभारत के अंदर बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का सार 18 अध्याय में के बीच में भगवान ने भगवद गीता के अंदर रख दिए। ये भीष्म पर्व महाभारत में पर्व है, रामायण में कांड है, और भागवत में स्कंद है, जो जो 10-15-20 अध्याय इकट्ठे होते हैं ना, अध्याय नहीं 15, जैसे भागवत के पहले स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे में 10 अध्याय है, तो कुछ अध्याय इकट्ठे होते हैं, फिर एक जैसे रामायण का कांड अरण्य कांड तो उसके अंदर 25-50 अध्याय। तो ये कांड, ये तो इस तरीके से अपने महाभारत में पर्व है भाई, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व जो है जहां भीष्म के युद्ध का समय है, उसके बीच में ये भगवद गीता 23वें अध्याय से लेकर, और 23 और 18 45 होते हैं, 43 45, 25 और 18 43 होगा, हाँ ऐसा भगवान, हाँ ही कौन आगे, पहले एक बार सुनाया था आपको, गणित सुनाया था एक बार, एक सुनी होगी बहुत, एक और इंस्पेक्टर स्कूल में चला गया और जाके बच्चों से पूछने लगा, बताओ ऐसे प्रश्न मानो पूछो, पूछ रहा है कि यहां से अंबाजी 180 किलोमीटर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? सब बच्चे परेशानी से देख रहे हैं, ये कैसा प्रश्न है, यहां से अंबाजी 180 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? एक बच्चा कहीं कोने में बैठा, सर मैं बताऊं, बताओ बोले 48 साल होगी, उसकी उम्र थी 48 साल। बड़ा खुश हो गया, तो बड़ा बड़ा तो बच्चा बड़ा होशियार है, 48 साल बता दिया, सही तो सही उम्र है मेरी बता दी। उसको पूछा बताए आपने कैसे गणित कैसे की, ये मैथमेटिक्स कैसे की, हिसाब किया कैसे। बच्चा बोलता है सर हमारा भाई है ना छोटा, वो आधा सा पागल है, उसकी उम्र 24 साल है। और आपका प्रश्न जो ऐसे लगता है कि आप पूर्ण पागल हैं, इसलिए 48 साल होनी चाहिए। तो गणित गणित आती नहीं है, गणित बहुत मुश्किल है। जब से ये कैलकुलेटर और कंप्यूटर आए हैं तब से लोगों को गणित भूल गई, और जब से मोबाइल फोन के अंदर फोन मेमोरी आ गई है तब से लोगों को फोन नंबर अपना ही याद नहीं होता है, अपना नंबर याद नहीं होता है। मैं देख के बताता हूँ, चलो मतलब याददाश्त हमारी आस्ते आस्ते खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसका यूज नहीं कर रहे। पहले मैं तो गणित याद हुआ करती थी, सवा और डेढ़ और पौने दो के भी पहाड़े पढ़ते थे हम, अब तो सीधा ही कोई नहीं पढ़ता है। अढ़ाई अढ़ाई पंच बढ़ाई पंच अढ़ाई साढ़ा सत, दो का या ढाई के भी पहाड़े पढ़ते थे, तब दिमाग को इस्तेमाल करते, अब दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। जब से लोगों ने दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ दिया तब से दुनिया के अंदर बहुत समस्याएं खड़ी हो गई। अब मतलब आपका अगर मोबाइल बहुत से बड़ी समस्या थी, मोबाइल गुम हो गया तो सारे कॉन्टेक्ट खत्म, गुम हो गए कुछ नहीं। कंप्यूटर फेल हो गए, कंप्यूटर काम नहीं किया तो सारा बैंक में क्या चेक जाके दो, कंप्यूटर काम नहीं करे, वो सर्वर डाउन हो गया तो खड़े रहो कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो सर्वर डाउन हो गया तो सब डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड हो गया ना। भाई फायदा तो बहुत है लेकिन हमारा अपना दिमाग, डॉक्टर बैठे हमारे बहुत सारे, पुराने जमाने में आधा एक घंटा 20 मिनट डॉक्टर अच्छी तरह से चकास करता था मरीज को, अब तो आते ही हाँ जा ये सब ये करा के एक्सरे हो गया ये हो गया सीटी 50 एक पहाड़, वो बैठ के आधा घंटा उन पेपर को पढ़ेगा लेकिन मरीज को आधा घंटा नहीं देखेगा। ओ भाई मैं बीमार हूँ, पेपर नहीं बीमार है, बीमार मैं हूँ। मरीज लड़ेगा भाई चलाएगा, मैं बीमार हूँ भाई मेरे को देखो, ये पेपर कागज देखेगा। तो पहले डॉक्टर को अपनी क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर विश्वास होता था और उसको सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, और अब जो इन्वेस्टिगेशन कहती है वही ठीक है, मेरा दिमाग में इस्तेमाल नहीं करूंगा। और फिर तो ऐसे होगा, बहुत ये तो भागवत में बड़ी अजीब कथा आती है, जहां जहां विश्वामित्र का जन्म हुआ है और परशुराम का जन्म हुआ है ना, तो जो खीर के लोटे थे वो बदल गए थे, वो मां ने समझा कि बेटी को शायद बहुत अच्छा दिया होगा ना पति है, तो बेटी तो क्षत्रिय थी तो उसको तो क्षत्रिय के लिए दिया था और उसको पढ़ ले ब्राह्मण के लिए दिया था, उल्टा हो गया तो परशुराम हो गया क्षत्रिय, ब्राह्मण जन्म हुआ ब्राह्मण घर में लेकिन हो गया क्षत्रिय, और वो होना चाहिए था विश्वामित्र को ब्राह्मण, हो गया क्षत्रिय, उल्टा हो गया सारा। तो टेस्टों का ऐसे होता है, वो यूरिन टेस्ट के लिए कोई अंदर रख के आई माता जी, उसको भेजना था, वो शीशी नीचे गिर गई, शीशी गिर गई तो सफाई वाली थी, उसने बोला तो मैंने झगड़ा करेंगे नाराज हो गए, उसने अपना पेशाब रख दिया। वो डॉक्टर के पास चकास की गया तो उसमें आया कि इसको गर्भ है, और नाम क्या है, गोपाल दास को गर्भ है। अब डॉक्टर परेशान, हरे कृष्णा, रिपोर्ट के ऊपर सारा डिपेंड है। और नाम भी तो छोटा लिखते हैं ना आजकल, पता तो लगा नहीं कि नहीं लड़का है कि लड़की है। कल हमको मिला कि गुंजन लड़का है, पर लड़की भी गुंजन का नाम है, लड़का भी गुंजन का है, तो गुंजन को गर्भ है, तो घर में परेशान हो गए ये आदमी को क्या। तो ये दिमाग यूज इस्तेमाल होता नहीं है, वो सारा रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गया। देख लो क्लिनिकल सेंस जो पुराना होता था वो खत्म होता जा रहा है, दिमाग का उपयोग ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई रवि? नहीं डॉक्टर साहब, अरे कृष्णा। क्या टाइम हो गया भाई? हाँ साढ़े नहीं नहीं अरे कृष्णा, इसको यहां रखते हैं कथा को, लेकिन कहने का भाग है भगवत गीता महाभारत के बीच में 18 अध्यायों के ऊपर है, जिसके लिए व्यास देव ने ही और ऋषियों ने ये लिखा है कि सर्व उपनिषदों गावो। अगर सारे ही वेद शास्त्र गाय का रूप धारण कर लें तो गाय के अंदर से क्या मुख्य चीज निकलेगी? दूध, दूध निकलेगा। तो ऐसे सारे शास्त्रों के अंदर से जो सार रूपी दूध है वो निकाला गया है गीता के रूप में। सारे शास्त्रों का सार है, लेकिन दूध सबको तो निकालना नहीं आता है। कितने यहां माता जी बैठी हैं, आप गाय में से दूध निकाल सकती हैं? यहां गाय लाके बाहर खड़ी कर दें, कोई निकाल सकती है? दो तीन हाथ ऊपर गए, हाँ दो तीन है ना, ये पुरानी है बेचारा, देखा होगा दूध निकाल सकती है। बॉम्बे में COW काओ लिखा बोर्ड के ऊपर और टीचर ने पूछा ये क्या है, बोला काओ, और उसके साथ फोटो पड़ा था काओ का, गाय का फोटो था। तो लड़का उसको बोलता है काओ कैसे है सर ये, बोला क्यों, बोला इसमें दूध की थैलियां कहां है, दूध की थैलियां इसमें कहां है भाई। उसने समझा गाय ऐसी होगी जैसे साइकिल वाला नहीं आता थैलियां टांगी होती हैं, तो ऐसे गाय के अंदर कहीं थैलियां टांगी होती, जैसे पेड़ से निकालते आम है जैसे थैलियां तोड़ते होंगे भाई। गाय तो अलो नहीं है ना, बॉम्बे में गाय नहीं रख सकता है कोई, कोई अपने घर में गाय नहीं रख सकता, वो दूसरी बार है, कुत्ता अपने घर में रख सकता है। तो गाय वाली सिविलाइजेशन खत्म हो रही है, जो जो सभ्यता हमारी गाय की वो चली गई, उसकी जगह पे अब कुत्ता आ गया। घर में कुत्ता रख सकते हो, गाय नहीं रख सकते हो। ये इसको कहते हैं संस्कृति का ह्रास या गिरावट। तो वो पशु जो आपको मां की तरह दूध पिला सकता है उसको बाहर निकालो, और दरवाजे के ऊपर लिखा क्या होता है, बी अवेयर ऑफ द डॉग। तो उसके नीचे किसी ने लिखा वुच, कौन से वाले कुत्ते सावधान रहे हरे कृष्ण। सर्व उपनिषदों गावो, सारे शास्त्र गाय का रूप धारण कर ले तो उसके अंदर मुख्य चीज है दूध, लेकिन दूध निकालना भी किसी को आना चाहिए ना। दोगदा गोपाल नंदन, जो गोपाल गोपाल जिसके पास लाखों गाय थी उनका बेटा गोपाल नंदन कृष्ण, उस सारे दूध को निकाल के सारे शास्त्रों का सार उसने निकाला है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का उद्देश्य है मुझे श्री कृष्ण को जानना। क्यों? बोला अहम वेदात वेदक, वेदों को मैंने लिखा है। वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेद की रचना करने वाला हूं और वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। तो वेद शास्त्र का वो गोपाल नंदन पर दूध निकाल के क्या करेंगे, बछड़ा पिएगा। तो बछड़ा कौन है, पार्थो वत्स, अर्जुन को बछड़ा बनाया, सारा दूध उसको पिलाया। और फिर बछड़ा सारा दूध पी जाएगा तो आपको कहां से मिलेगा, सब दूध बछड़ा पी जाए तो हमको कहां से, नहीं मिलेगा ना घर पे। तो इसलिए पीछे लिख दिया एक लाइन, भोक्ता सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम, वो गीता रूपी दूध अर्जुन रूपी बछड़े ने तो पिया, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए अभी भी गीता के रूप में अवेलेबल है, आपके लिए अभी भी है, आप उसको लेके अपने जीवन में अपना सकते हो। तो गीता मुश्किल से आपको निकालने के लिए, परेशानी से मुक्त करने के लिए, और सच्ची अपनी पहचान के साथ असली सुख और आनंद प्राप्त करने का शास्त्र है। अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक रामानी और परिवार का, जो आप सबके संग में बैठकर भगवान की कथा करने का ये अवसर और ये मौका हमको प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 5-7 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, फिर किसी का 1-2 प्रश्न है तो उसका उत्तर देंगे, नहीं तो फिर आगे जो भगवान की इच्छा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।